ओम शांति। आज प्यारे बाबा का, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त आरोहण दिवस है। 54 ईयर्स पहले 18 जनवरी 1969 आज के दिन साकार बाबा ने अपना अव्यक्त रूप धारण कर लिया और तब से लेकर अब तक प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के साथ, जिसको हम बाप दादा कहते हैं और मात पिता भी कहते हैं। बाप दादा का अर्थ है कि शिव बाबा हमारे बाप हैं और दादा ब्रह्मा बाबा हैं, और मात पिता का अर्थ है कि ब्रह्मा बाबा माता हैं और शिव बाबा पिता हैं। तो इस रूप में इतने वर्ष तक बाबा ने सेवा करके सारे विश्व में अपने बच्चों को ढूंढ कर, चुन करके उनको अपने मुख वंशावली बनाया। तो हम देख रहे हैं, आज का दृश्य भी देख लो कि कितने कितने अति भाग्यशाली आप हैं जो साकार शरीर में प्यारे बाबा के मधुबन में डायमंड हॉल में उपस्थित है। तो प्यारे बाबा की उपस्थिति, जहां बाबा के बच्चे प्यार से मेरा बाबा कह के बाबा को खींचते हैं, वहाँ हो जाती है। और मधुबन में तो विशेष तौर पे रहती ही है, और 18 जनवरी अव्यक्त दिवस पर तो जैसे किसी कमांडर इन चीफ का ध्यान रहता है, तो मधुबन में बाबा का विशेष ध्यान रहता ही है, उपस्थिति रहती है, क्योंकि ये बाबा की तपस्या भूमि है। आप सबको उस उपस्थिति का आज विशेष अनुभव हो ही रहा होगा, अवश्य हो रहा होगा। तो जिन भाई बहनों को स्वयं को ऐसा महसूस हुआ कि हमें अव्यक्त बाप दादा द्वारा विशेष आज शक्ति और वरदान मिल रहे हैं, वो कृपया जरा अपना हाथ उठाएंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वैसे तो बाबा वरदानी स्वरूप हैं ही, लेकिन विशेष दिन और विशेष अमृत वेले से लेकर आज तो जैसे वर्षा का सीजन होता है, तो कोई कोई दिन खूब वर्षा होती है। आज तो बाबा के बच्चों के ऊपर रूहानी स्नेह की, सूक्ष्म शक्तियों की और वरदानों की वर्षा इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, और ये अमृत वर्षा है। तो सब जो हैं, जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल ही लवलीन बाबा के अंदर आत्माएं हो रही हैं स्नेह में। ऐसे दिन कुछ बाबा की स्मृतियां क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने तो साकार बाबा को देखा भी नहीं, उनके साथ से पालना लेना या उनके साथ संग में रहने की बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने देखा नहीं तो हम कुछ किसी बात में रह गए, लेकिन ड्रामा के अनुसार हर एक आत्माओं का पाठ है और हर एक आत्माओं के पाठ में कल्याण है। जिन्होंने देखा उनका अपना पाठ था, जिन्होंने नहीं देखा उनको भी बाबा ने उतनी ही पालना दी है। जो बच्चे कुछ पहले आ गए कुछ बाद में आ गए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी गेट खुला नहीं है, बाबा ने गेट खोला नहीं है, बाबा बच्चों का वेट कर रहे हैं कि जितने बच्चे आने हैं वो आ जाएं, लास्ट वाले भी आ जाएं, तब गेट खोलूं। इसलिए आप जानते हैं कि 54 ईयर से बाबा बच्चों को अव्यक्त में बुला रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हम वंचित रह गए। तो गेट बाबा ने बिल्कुल खोलने की तैयारी है, सिर्फ बाबा को तरस आता है कि बच्चे पुराने वाले भी रेडी हो जाए और नए वाले भी आ जाए। तो आप सब लकी हैं, क्योंकि अभी टू लेट नहीं हुआ है, होने वाला है। पर जो आज के दिन इस वर्ष इस हॉल में बैठे हैं वो बहुत लकी हैं। शाम को जब आप बाबा की मुरली का वीडियो देखेंगे और चीज़ें तो उसमें देखेंगे ही, ये भी देखेंगे कि जो उसमें बैठे हैं उसमें आज बहुत सारे नहीं हैं। तो इसलिए आज भी जो हॉल में बैठे हैं तो बाबा ने कह रखा है कि अचानक, इसलिए किसी को भी कभी भी उसका संगम का पाठ पूरा हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अब तक भी कई भाई बहन अंदाजा लगाते हैं, पूछते हैं संगम कब तक चलेगा। कई कई प्रकार की बातें सुनने में मिलती हैं कि 100 वर्ष 2000 पता नहीं 34 में पूरे होंगे। इस प्रकार के अंदाजे लगाना या उनके ऊपर विचार करना बहुत बड़ा स्वयं को धोखा देना है, क्योंकि हमारे लिए किसी के लिए भी संगम कभी भी पूरा हो सकता है। तो उसको देख करके मतेश्वरी जी ने ये बात पहले दिन जान ली थी, इसलिए मतेश्वरी जी सबसे पहले संपन्न और संपूर्ण हो गए। अन्य ने भी जान ली थी। तो हमको ये ध्यान रखना है, जैसे निर्वैर भाई साहब कह रहे थे कि हम भाग्यशाली हैं, लेकिन हमें समय मिला है कि हम सूक्ष्म में अपने आप को चेक करें, जैसे आज की मुरली में भी था, और अपने आप को क्या बना लें। इंग्लिश भाषा में बाबा ने कहा परफेक्ट। तो परफेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होता। दुनिया में आप कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो उसको, छोटी वस्तु भी लेने जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से देखते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो हम लोगों में मोटे रूप में बाबा ने बताया हुआ है कि जो आत्मा अभी तक शरीर में है, कर्मातीत नहीं बनी है, तो कुछ ना कुछ उसको अभी संपन्नता के लिए मार्जन है। जिस दिन हम कर्मातीत हो जाएंगे तो इस पुराने शरीर में रह नहीं सकते। दूसरे शब्दों में कोई ना कोई अभी हमारे में कमी है। अच्छा, अब गौर से सुनिए, डिफेक्ट का टेस्ट क्या है कि मेरे अंदर कुछ डिफेक्ट है, कितना डिफेक्ट है, तो उसका हमको पता कैसे लगता जाए। तो बाबा ने मोटे रूप से आज भी कहा है, पहले भी बताते हैं कि परफेक्ट बनने में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसकी निशानी है हमारे ऊपर किसी चीज का अफेक्ट तो नहीं आता, अफेक्ट मैंने फीलिंग तो नहीं आती। ये तो हमने मुरलियों में सुना है, फीलिंग फ्लू की बीमारी है, लेकिन फीलिंग से आपको पता लग जाएगा कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपस में बहुत बोलचाल में हो, चाहे प्रकृति के द्वारा कोई विघ्न आ जाए, तो हमको उसकी फीलिंग आकर हम अपने आत्म स्वरूप जो हमारा आनंद स्वरूप है, अति इंद्रिय सुख का स्वरूप है, उससे नीचे तो नहीं आ जाते। तो फीलिंग से, फीलिंग मीन्स कि हम उसके प्रभाव में तो नहीं आ जाते। तो बाबा ने कहा हुआ है कि किसी भी वस्तु के प्रभाव में आना या किसी को प्रभाव अपने प्रभाव में लाना, ये आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि कमल फूल समान क्यों सिंबल दिया गया, कि कमल पर किसी चीज का असर नहीं होता और कमल कीचड़ में रहता है। तो इसलिए व्यक्त के दिन हमको ये देखना है कि मैं इफेक्ट प्रूफ हूं, अर्थात मुझे किसी चीज की फीलिंग तो नहीं आती। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि बाप समान बनना है तो मैं उस्तति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, इनमें मैं समान रहता हूं रहती हूं, या उस्तति में खुश और निंदा में उदास। कुछ दिन पहले बाबा ने बताया था ना कि ब्राह्मणों का सुख शांति जो है वो साधनों पर, सेल्वेशन पर या प्रशंसा पर तो आधारित नहीं है, वो आत्मिक अति इंद्रिय सुख ईश्वरी प्रेम पर आधारित होना चाहिए। इस हिसाब से जिसको हम कहते हैं परफेक्ट, उसका मतलब क्या है? रोज हम सुनते हैं बाप समान, बाप समान, बाप समान। कौन से बाप के समान? शिव बाबा के समान तो नहीं हो सकते ना, बाबा कहता है कि शिव बाबा के समान बनो, क्योंकि कोई भी बात होगी हम कहेंगे आप तो भगवान हैं, आप तो ऑलमाइटी हैं, तो आपके समान हम कैसे बन सकते हैं। तो जब तो शिव बाबा क्या उत्तर देता है कि नहीं, मेरे समान नहीं बनो, जिसको मैंने अपने समान बनाया वो आपकी तरह शरीरधारी है, आपकी तरह ही वो परिवार में रहते थे, उनको आपकी तरह ही, हमारी तरह ही प्रकृति भी उनका सामना करती थी, परिवार भी उनकी बातें थी, समाज में भी थी, उन्होंने उनको कैसे पार किया। हमें ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। और ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, माया आपके सामने आ नहीं सकती, पहले मेरे सामने आती है, मैं उसको अच्छी तरह से ठीक करके उस पर विजय पाके फिर आपके पास भेजता हूं, ताकि मैंने, अगर मैं कर सकता हूं तो बच्चे भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। अच्छा, उसके लिए बाबा ने हमको एक बहुत सिंपल समझानी दी है कि बच्चे फॉलो फादर, समान बनने के लिए फॉलो फादर, अर्थात बाप को देखो। और बच्चे क्या करते हैं कि बाप को देखने की बजाय बहन भाइयों को देखना शुरू कर देते हैं बस, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार भी एक अपनी दुनिया है। अब दुनिया की लौकिक वाली दुनिया से तो हम बाहर आ गए, बाबा की प्रोटेक्शन में आ गए, छतर छाया में आ गए। आज सुबह भी अमृत वेले बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा बाबा माता की तरह, जैसे माता अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखती है, तो ब्रह्मा बाबा ने इतने अनेक बच्चे जो मुख वंशावली बच्चे हैं, एक एक बच्चे का वो बाबा ध्यान रखता है, उसकी प्रोटेक्शन रखता है, उसको देखता रहता है जैसे माँ देखती रहती है। बच्चा रो तो नहीं रहा, बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है, तो बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, तो माँ ही देखती है। तो सबसे बड़ा कार्य इस दुनिया में, शिव बाबा तो बीज है लेकिन जड़ से लेकर के उसने किया, और इसीलिए पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक चाहे सुख था चाहे दुख था, चाहे ब्रह्मा का दिन था चाहे ब्रह्मा की रात थी, चाहे वह श्री कृष्ण जी के रूप में सुंदर थे या द्वापर में शाम बन गए, वो हमारे साथ रहे। तो अगर किसी का एक जन्म का भी साथ हो तो व्यक्ति कहता है लाइफ लॉन्ग, और अगर जन्म जन्म का साथ हो तो क्या कहना, और सारे कल्प का साथ हो तो क्या कहना। और किसका साथ हो, जिसने शिव बाबा के समान बनकर, बाप दादा एक जैसे हो गए, शरीरधारी होकर एक आत्मा होकर ब्रह्मा बाबा होकर किया, तो उसके हम बच्चे हैं। तो वो हम उसके उंगली छुड़ाने की कोशिश भी करें फिर भी वो हमारी उंगली पकड़ लेता है। ऐसे बाबा को आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि दिल से जितना शुक्रिया हो सकता है। कई कहते हैं ना कि आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया कि मैं जन्म जन्म नहीं चुका सकता, वो तो एहसान है। तो बाबा कहता मैं एहसान नहीं करता, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि देखो जरा संगम के ऊपर, ऐसा तुमको कोई सारे कल्प में, चाहे देवी देवताओं का युग था, सारे कल्प में कोई ऐसा माँ मिली, कोई ऐसा बाप मिला जो अपना परम धाम छोड़ के कौन सी दुनिया में आए, ऐसी सबसे तमोगुणी दुनिया में आए, जैसे बिल्कुल मैला कपड़ा भी अति मैला और अति कमजोर छलनी होने वाला, जिसको आप छोटी भी नहीं लगा सकते, बड़े कोमल हाथों से जिसको धोना है, उसमें आकर के हर एक आत्मा जानती है कि हमारे ऊपर 63 जन्मों का, आधे कल्प का क्या है, गलत कर्मों का हिसाब किताब चढ़ा हुआ है, और इसीलिए हम अधीन हैं। हिसाब किताब का क्या रिजल्ट होता है, जैसे पिंजरे का पंछी होता है, वो बाहर नहीं निकल सकता, निकाल भी दो तो उड़ नहीं सकता, तो हम अधीन हैं। तो बाबा कहता है अधीन मैंने गुलाम, मैंने जेल में, तो हम इतनी जेल में, जिसको बाबा सीता को कहता है, सीता रूपी आत्मा है जेल में है, तो हम महसूस करते हैं कि हम जेल में हैं, हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। कोशिश भी करें तो इंद्रियां खींचती हैं, फिर हम अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के गुलाम हैं। ना हमारा मन हमारे कहना मानता है, बुद्धि हमारी भटकती है, संस्कार हमारे को ऐसे नीचे खींचते हैं कलयुग की तरफ। हम निकलना चाहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत इस प्रकार के होते हैं ना कीचड़, उसमें फंस जाए तो निकल नहीं पाते, फिसलते रहते हैं। ऐसी दुनिया से, कीचड़ से बाबा ने हमको कैसे निकाला, प्रेम से। जैसे बच्चा होता है तो उसको प्रेम से करते करते शिक्षा दी, धीरे धीरे रोज मुरली सुनाई, एक एक ड्रॉप अमृत का रोज हमने पिया, जिसकी यादगार वो शिव के ऊपर बूंद बूंद चढ़ाते हैं। तो बूंद बूंद करके बाबा ने करके करते आज हमको डायमंड हॉल में बिठाया है। हम सब सोच सकते हैं क्या से क्या बनाया है। तो बाबा का शुक्रिया करने के लिए आप बाबा को याद करके जरा ताली बजाओ। अगर हम बाबा का त्याग देखें तो एक इतना बड़ा ज्वेलर जिसके लोग सम्मान करते थे, इज्जत, राजा लोग भी उनके आगे हाथ जोड़ते थे कि असली ज्वेलर तो आप हैं, हम तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग करके, जिसको कहते हैं संपूर्ण सब कुछ समर्पण करके, शरीर को भी, प्रॉपर्टी तो और चीज है, अपने मन को तन को भी समर्पण करके भगवान के, और बकायदा तौर पर मन से समर्पण नहीं, कई बार हम मन से कह देते हैं बाबा आप तो जानते ही है ना मैंने ये गलती की है, तो मन से आपको तो पता ही है, नहीं, बकायदा तौर पर जब कोई व्यक्ति को रियलाइज करना होता है तो उसको थोड़ा बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो बाबा ने करके माताओं की ट्रस्ट बना के बिल्कुल एक प्रकार से विश्व सेवाधारी वर्ल्ड सर्वेंट बन गए, और पक्का पहले दिन से बने और लास्ट दिन की लास्ट सांस तक बने। और कभी भी बाबा ने मैं नहीं कहा, मैं और मेरा नहीं कहा, मनमत नहीं करी। तो ऐसे बाबा ने, जिसने फिर ये सोचकर कि सारी दुनिया की सेवा मुझे करनी है तो शरीर भी एक बंधन है, आप सोचो, शरीर को भी त्याग कर सूक्ष्म रूप धारण करके, और किसी को कोई कहे को शरीर त्याग दे भगवान के लिए, हम सबको कहे कि बच्चा आप डायमंड हॉल में बैठे हो, चलो ब्रह्मा बाबा की तरह आज 18 जनवरी है, सब शरीर त्याग दो, कितने तैयार होंगे भाई हा? कोई बहाना करेंगे, अभी मेरे भी कर्म विनाश नहीं हुए, अभी तो मुझे यहीं रहने दो, है ना। तो शरीर त्याग दो, तो शरीर त्यागने के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने हमको उदाहरण दिए कि देखो एक पतंगा, वो भी हमारी तरह जानदार है, उसके अंदर प्राण है, वो क्षमा के ऊपर रात के वक्त, दिन को नहीं, क्योंकि अंधेरे में अंधकार में ही हम होते हैं, तब शरीर त्यागना है, सतयुग में तो त्यागने की बात नहीं। वो आकर के सचमुच अपने आप को क्षमा में जला देता है, वो भी तो कुछ सोचता होगा कि नहीं, उसको भी पता है। और बाबा ने हमको भी समझाया है कि शरीर त्याग दो, दुनिया त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, पर आप अविनाशी हैं। हमारा कोई सब कुछ ले जाए, शरीर भी ले जाए, फिर भी हम अविनाशी हैं। गीता में तो सिर्फ लिखा है, पर बाबा ने हमको सारा हमारा ज्ञान ही अलफ से शुरू होता है कि तुम अवराशी आत्मा हो। तो ब्रह्मा बाबा ने उसका प्रैक्टिकल बताया कि मैं तो आत्मा हूं। तो ये शरीर आदि भी एक सबसे बड़ा बंधन और प्यारा लगने वाला बांधने वाला शरीर है। तो उसने शरीर त्याग करके भी दिखा दिया कि देखो शरीर त्याग के भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप देखते हैं कि जब अव्यक्त बाबा आते थे तो आवाज कैसी होती थी। अगर अव्यक्त बाबा चाहे, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, तो हमारे जैसी नॉर्मल आवाज में नहीं बोल सकते, पर उन्होंने हमको अव्यक्त बनना सिखाने के लिए कि अव्यक्त बोल ऐसा होता है, अव्यक्त बोल को व्यक्ति गौर से सुनता है, क्योंकि अव्यक्त आवाज धीमी है तो अटेंशन जाता है। और बाबा जब बोलते थे तो ब्रह्मा बाबा की मुरली सुनो और अव्यक्त बाबा की मुरली सुनो तो बहुत शब्द भी स्लो करके बोलते थे ताकि व्यक्ति के समझ में आ जाए, उसके मूल्य उसको धारण करें। इस प्रकार से 54 वर्ष तक बाबा ने हमारी अव्यक्त पालना की कि हम भी अव्यक्त सुनने अव्यक्त बोलने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि प्यारे बाबा की अगर हमको प्रैक्टिकल में फॉलो फादर करना हो तो दो बातें ही अगर हम सिर्फ जान लें, पहली तो उनका परिचय है कि हमारा बाबा ऑलमाइटी है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। ऑलमाइटी में शक्ति भी आ जाती है, तो ज्ञान शक्ति और स्नेह ये तीन चीजें हमारे बाबा ने हमको दी। और प्रैक्टिकल में जो बाबा कहते हैं एक नामी, तो एक नामी में सब कुछ आ जाता है। कल भी मुरली में था एक रस सबने। एक तो हम ये याद रखें कि ये ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां आपको सब कुछ मिल सकता है, इसलिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं। आपको चाचा मामा काका गुरु आदि की आवश्यकता ही नहीं कि वो परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु है। दूसरी बात है धैर्यता। आप गौर से देखेंगे तो देवी देवताओं में प्रैक्टिकल में धैर्यता थी। आप देखते हैं रामलीला के अंदर जब राम को चलते हुए दिखाते हैं विशेष तौर पे, तो राम और लक्ष्मण बहुत स्टाइल से चलते हैं, धैर्यता से। तो देवता बोलते हैं, चलते हैं, देखते हैं, उनका स्वभाव धैर्यता का है। कभी भी देवता जल्दी नहीं करते। कभी कभी हमारी बहनें कहती हैं ना आओ लक्ष्मी नारायण की तरह चल के दिखाओ, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उनको इमर्ज करते हैं तो तेजी से दौड़ नहीं लगाते, तेज तेज नहीं चलते। तो इसलिए धैर्यता। अव्यक्त बाबा भी जब दृष्टि देते थे लाइन लगती थी तो अव्यक्त बाबा ने कभी भी जल्दी नहीं की कि अब 100 व्यक्तियों की लाइन आ गई है तो जल्दी जल्दी कर लो। गाइड जरूर आगे करते हैं, आगे चलो, लेकिन अव्यक्त बाबा ऐसे देखते थे। हमने मम्मा को भी देखा। मम्मा एक बार दिल्ली में आई थी बहुत पहले, जब थोड़े से भाई बहन थे, तो रेलवे स्टेशन पर माउंट आबू आने वापस आने के लिए मम्मा दृष्टि दे रही थी। 15-20 भाई बहन थे और उनको दृष्टि दे रही थी, तो ट्रेन ने सीटी बजा दी और गार्ड ने झंडी लगा दी। मैंने कहा मम्मा, क्योंकि डिब्बा मम्मा का जरा दूर था, मम्मा ने बिल्कुल उसी प्रकार उसी स्पीड से धैर्यता से सबको दृष्टि देती रही, यहां तक कि ट्रेन ने दूसरी सीटी भी बजा दी और गार्ड झंडी हिलाने लगा। फिर मैंने कहा मम्मा गाड़ी, मम्मा चुप रही। मम्मा ने उसी स्पीड से लास्ट तक दृष्टि दी और डिब्बे की तरफ चलते हो भी मम्मा ने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई। इसको कहते हैं काल जीत। और ये फैक्ट है कि जब मम्मा डिब्बे में बैठ गई तब गाड़ी चली। अब आप सोचो, तो आम व्यक्ति जो है जल्दी करता है, तो देवता का मतलब है कि उसने कंट्रोल रखा हुआ है कि मेरी प्रारब्ध के अनुसार समय चलेगा, गाड़ी चलेगी, ना कि गाड़ी के अनुसार मैं चलूंगा। तो इसको कहते हैं धैर्यता। तो अगर हम आज, और धैर्यता ड्रामा का भी अर्थ है, ड्रामा मैंने धैर्यता कि ड्रामा हमको सिखाता है अगर ट्रेन ने छूटना है तो आप कुछ भी कर लो छूट जाएगी, आप लंगड़ा के गिर पड़ो फिर क्या करोगे। इसलिए एक्यूरेट ड्रामा है वो धैर्यता में आता है। और कहा जाता है सबर का फल मीठा होता है, हमेशा कहा जाता है। और आप कछुए और खरगोश की रेस को भी जानते हैं, जीता कौन, जीता कौन, कछुआ जीता या खरगोश? क्योंकि धैर्यता, स्लो एंड स्टडी। अच्छा, अब है फल। तो हमारे सारे पुरुषार्थ का फल अगर किसी ने देखना हो कि हमारे सारे पुरुष, खुद ही देखना हो तो हमारे सारे पुरुषार्थ का फल है मधुरता। मधुरता, मम्मा की आवाज कितनी मीठी है। तो मीठी आवाज कब हो सकती है? वैसे तो हम खुशी के दिन मुंह मीठा कराते हैं, लेकिन वो मीठी आवाज का सिंबल है। मीठी आवाज कब हो सकती है? नॉर्मल या बीच में अपने मतलब के लिए मीठी आवाज करना, वो नहीं। वो तो दुकानदार भी मीठा बोलता है, आओ जी, लेकिन वो नकली होता है। अगर दुकानदार को वही सामान वापस करने जाओ फिर उसकी आवाज मीठी रहती है कि नहीं, देख लो। इसलिए स्वाभाविक, चाहे प्राकृतिक कुछ भी करे, चाहे बुखार चढ़ा हुआ हो 102, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, तब भी आवाज मीठी रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने आत्मिक स्वरूप में धैर्यता को जीवन में धारण किया हुआ है, तो सबर का फल मीठा होता है। तो उसका प्रूफ है, नहीं तो कोई परिस्थिति आ गई तो चेहरे में फर्क आ जाएगा, आवाज में फर्क आ जाएगा, सार यह के व्यवहार में फर्क आ जाएगा। तो बनने वाले देवता, अगर उनके व्यवहार में फर्क आ जाए तो फिर उनको कौन पूजेगा, कौन नमस्कार करेगा? फिर वो मंदिर में ही जाएंगे कि कम से कम आपकी मूर्ति है। वो सुबह जाओ शाम जाओ, मूर्ति जैसी मुस्करा रही वैसी मुस्कराती रहती है, या सुबह मूर्ति का रूप और हो जाए, शाम को और हो जाए, और मंदिर में जाएगा तो पूजने लायक। कहने का भाव ये है, हमको स्वयं ही खुशी होगी अगर हम एक नामी अर्थात बाप को ही देखने वाले। अब बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को ही देखते रहो, और किसी से कंपेयर करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। आपको कोई आत्मा का बहुत अच्छा लगेगा परफॉर्मेंस, तो आप क्या करेंगे, उस अच्छा बनाने वाले को छोड़कर अच्छा बनने वाले के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बनाने वाला तो बाबा ही है, इसलिए आप धोखा नहीं खा सकते। किसी को आप देखेंगे ये तो बहुत गलती कर रहा है, तो आपके अंदर उल्टा ख्याल आ जाएगा, ये क्या है, इसको, ये कोई ब्रह्मा कुमार है, ये कोई ब्रह्मा कुमारी है, फिर आप धोखा खा जाएंगे। کیونکہ اس کے پرشارت میں کوئی ایک آدھ بات ہے جس کو وہ ٹھیک کر رہا ہے، ہم اس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ رچنا رچنا کو دیکھے گی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے بابا کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو. اور جن بچوں نے بابا کو اپنا بنایا ہے، چاہے وہ سبزی کاٹ رہے ہوں، چاہے وہ کچن میں سیوا کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھیڑ میں ہوں، ٹکٹ لینے میں لیٹ ہو رہے ہوں، ان کی خوشی نہیں جاتی. کہیں ویٹ کرنا پڑ جائے، کہیں دھوپ زیادہ آ جائے، ان کی خوشی نہیں جاتی. ایک رس رہتے ہیں، اس کا کارن یہی ہے. اب میں آپ کو ایک بیگ دکھا رہا ہوں. یہ بیگ دیکھیے، یہ ہینڈ بیگ ہے، آج بھی چمکتا ہے، اس میں بہت اچھا فوم لگا ہوا ہے. یہ بیگ برہما بابا نے مجھے دیا تھا. اس لیے دیا تھا کہ میں دلی میں رہتا تھا اور مجھے بابا نے، جس کو دنیا میں وی آئی پی کہتے ہیں، ویری اگنورینٹ پرسنس ہے نا، وہ اپنے آپ کو وی آئی پی کہلاتے ہیں، ان کی سیوا کرنے کے لیے میری رسپانسیبلٹی تھی. تو بابا نے کہا، ان دنوں انڈیا میں ایسے بیگ بنتے ہی نہیں تھے، ہانگ کانگ سے کسی سندھی پریوار نے یہ بابا کو بیگ بھیجا تھا. سندھی پریوار آتے تھے، کچھ نہ کچھ چیز لے آتے تھے، ریڈی میڈ کپڑے لے آئے، وہ انڈیا میں نہیں ہوتے تھے. تو بابا نے سوچا یہ سیوا کرتا ہے، میرے کو دیا اور کہا کہ جب بھی جاؤ اس سے ملنے کسی سے، تو جو لیٹر یا لٹریچر لے کے جاتے ہو اس میں ڈال کے لے جاؤ. اور سچ مچ میں جب اس میں ڈال کے وہ لیٹر لٹریچر لے جاتا تھا، تو مجھے لگتا تھا بابا میرے ساتھ جا رہا ہے، اور بابا کی اس میں شکتی بھر گئی اور اس کا بہت فائدہ ہوتا تھا. تو اسی پرکار سے، کیونکہ ایک ستھول چیز ہے لیکن بابا کی دی ہوئی ہے، تو ویسے تو بابا کہتے ہیں کہ کسی سے ملنا ہو مجھے یاد کر کے ملو. یہ بابا نے پکا ہر بچے کو منتر دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرو، اگر پہلے بابا کو یاد کر لو گے تو سفلتا گارنٹیڈ ہے. اگر صرف اس وقت بھی بھول جاتے ہیں، اس ویکتی سے مل رہے ہیں تو دھیان ویکتی کی طرف چلے جائے گا. ہم جب کسی ویکتی سے ملتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں دو منٹ سائلنس کرو، اس کے بعد وہ بات کرتا ہے تو اور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بابا مدد کرتا ہے. اس پرکار سے ایک ستھول چیز سے بھی، اور اسی پرکار بابا نے، کیونکہ آپ نے بابا سے پالنا نہیں لی ہے، تو بابا کی پالنا کیا ہوتی ہے، کتنی زبردست اس کا پربھاؤ ہے. جیسے کسی کو لائف ٹائم کوئی انجیکشن لگا دے اور ساری زندگی اس کو وہ انجیکشن یاد رہے، طاقت بھرتا رہے، وہ بابا کی ملنے کی شکتی تھی. کیونکہ اس وقت آوشکتا تھی کہ جو برکش نے بڑا ہونا ہے یا بلڈنگ نے اوپر چڑھنا ہے، تو اس کے نیچے کی منزلیں طاقتور ہونی چاہیے. تو بابا نے وہ طاقت، جیسے بیج نے طاقت جڑ کو دی، اور جڑ نے وہ طاقت پھر تنے کو دی، جیسے بلڈنگ بنتی ہے، تو بابا نے ان بچوں کو، نمت جن کو بنایا، ان کو اس پرکار کی شکتی دی کہ وہ دنیا کی کسی بھی پرکار کی اتار چڑھاؤ کو جیسے بابا ہینڈل کرتے تھے ویسے کرے. تو اس میں ڈیپ سنیہ کیا ہوتا ہے، ڈیپ شکتی کیا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں اس میں، بابا کا پیار کیا ہوتا ہے، اس میں آتی ہیں. تو میں آپ کو دو چار باتیں سنا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بابا کہتے ہیں کہ ایک بار کوئی میرا بچہ بن گیا، ایک بار میرا بابا کہہ دیا، پھر کیا ہوگا؟ आपने एक बार सच्चे दिल से मेरा बाबा कह दिया तो बाबा बंधा हुआ है आपका ध्यान रखने के लिए, लाइफ, सारी लाइफ के लिए, क्योंकि आपने बाबा तो मेरे बच्चे कहता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाबा का। ये दो शब्द जो हैं, ये जो चाबी, जादू की चाबी होती है ना, उसके ऊपर जो गोल गोल होता है, वो ये है मैं बाबा का और बाबा मेरा। और उससे क्या फर्क पड़ता है? बाबा को हमारी सारी जन्म पत्री पता है और उस जन्म पत्री के हिसाब से बच्चे का कुछ भी बाबा ने कह रखा है, मैं कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, उसका जो भी गुण होगा उसको बाबा बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते एक गुण को बढ़ाते बढ़ाते सब गुण उसके अंदर ले आएगा, क्योंकि गुण से व्यक्ति को उत्साह मिलता है, गुण को यूज करने से उसको खुशी मिलती है। तो कहा बात यह है, ये ओम शांति भवन ऊपर आपने देखा, ये बनना था, बाबा तो उससे पहले ही व्यक्त हो गए थे, हिस्ट्री हॉल तक भी बाबा व्यक्त हो गए थे। तो ओम शांति भवन बनना था, उसके लिए 120 टन सीमेंट चाहिए था, 120 टन सीमेंट बहुत होता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीमेंट मिनिस्ट्री ही दे सकती है। तो मैं दिल्ली में था, मुझे कहा गया कि 120 टन सीमेंट लेना है, तो पूछता पाछता मैं सीमेंट कंट्रोलर के दफ्तर में पहुंचा। वो दिल्ली में एक रजिंद्रा प्लेस है, वहां पर था। पहली बार पहुंचा तो वो भाई बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था, मैं पहुंच के बैठ गया। जब उसकी बात पूरी हो गई तो मुझे उससे सीमेंट की बात करनी थी, तो उसने बोला कहिए क्या काम है, अब सुनना, गौर से सुनना, कहिए क्या काम है। तो मैंने उसे कहा आप किस शहर के रहने वाले हैं? अब आप सोच सकते हैं कि नॉर्मली कोई व्यक्ति किसी से मिलेगा तो काम की बात करेगा, शहर की बात तो नहीं करेगा। उसने मेरा ही शहर बताया कि मैं अमृतसर का बॉर्न हूं। उसने कहा मैं अमृतसर का ही रहने वाला हूं। अच्छा, यहां तक नहीं, फिर आगे चलिए। फिर मैंने उससे पूछा आप किस स्कूल में पढ़े हैं? अच्छा, उसने मेरा स्कूल बताया। अब आपको ताली बजानी चाहिए कि ये किसको पता है कि मेरा और उसका स्कूल एक है, मेरा और उसका शहर एक है, बाबा को ही पता। तो बाबा ने इस बात को भी यूज करवाया सीमेंट डलवाने के लिए। तो फिर उसने, हमने स्कूल के मास्टरों के नाम बताए उस वक्त के। अच्छा, फिर वो ऐसे हम खो गए जैसे हम स्कूल अमृतसर पहुंच गए हैं। उसके बाद उसने कहा काम बताइए। फिर मैंने उसको बताया, उसने कहा 120 टन सीमेंट। फिर अपने आप कहता है हाँ हाँ ठीक है, संजय गांधी ने अनंतपुर के गुरुद्वारे के लिए सीमेंट लिया है, ठीक है ठीक है। उसने हमें 120 टन सीमेंट दिलवाया। अच्छा, और बहुत आगे भी जब तक सीमेंट डीकंट्रोल नहीं हुआ वो देता रहा, दादी जी उसके घर गए वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि देखो बाबा को ये पता था, बाबा ने इसको भी यूज करके सेवा करवाई। इससे क्या पता लगता है कि हमारी पूरी जन्म पत्री बाबा के पास है, और बाबा अपने बच्चे का इतना ध्यान रखता है, इतना ध्यान रखता है। एक तो अपने बच्चे का सम्मान, कभी भी कुछ गलत दुनिया वाले करने की भी कोशिश करें कभी भी नीचा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है बाबा के। बाबा लौकिक और अलौकिक सब में मदद करता है, अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की तो दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग एक ऑफिस खोल के प्रैक्टिस करते हैं। तो दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध बिजनेस इलाका है, यहाँ तो दिल्ली के बहुत भाई बहन होंगे, जिसको सदर बाजार कहते हैं। तो सदर बाजार में मैंने एक होटल में कमरा लेकर के प्रैक्टिस शुरू कर दी। आयु मेरी 21-22 साल की थी। तो अभी मुझे 8-9 महीने हुए थे तो मैं माउंट आबू आया, तो पहली बात बाबा ने पूछी, बच्चे तुमने पास कर लिया? मैंने कहा हाँ, बड़ी खुशी से मैंने कहा बाबा मैंने पास कर लिया और मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करने शुरू कर दिया। तो बाबा ने कहा नज़दीक आओ। मैं नज़दीक तो था ही, तो और नज़दीक गया। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान उसमें जाएगा, अपने क्लाइंट के मामले में खाना खाओगे, ये भी नहीं पता लगेगा मैंने खाया खाया, बुद्धि जाएगी, तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब ब्रह्मा बाबा ऐसी उनकी पर्सनैलिटी है, चमकता हुआ चेहरा। तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अपने ऑफिस में नहीं दोबारा जाऊंगा और नौकरी करूंगा। अच्छा, बाबा ने कहा, मैंने अपने छोटे भाई को कहा जिसकी किताबें बताबें वापस कर दो, कुछ फर्नीचर था वहां रजौरी गार्डन सेंटर नया बना था वहां दे दो। अखबार देखा, कभी मैंने अखबार नौकरियों के लिए नहीं देखा था, देखा जो पहली नौकरी उसमें दिखाई दी उसमें मैंने हाथ से एप्लीकेशन लिख के भेज दी। बच्चा था, मुझे ये भी नहीं पता था एप्लीकेशन टाइप कराते हैं। अच्छा, अब क्योंकि बाबा की शक्ति पीछे थी, मुझे इंटरव्यू भी आ गया। अब इंटरव्यू पंजाब में किसी जगह था, भाखड़ा नंगल में, मैं दिल्ली में रहता था। तो जिस ट्रेन के डिब्बे में मैं गया उसमें 8 और लड़के उसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तो सारे बैठे फटफट इंग्लिश बोल रहे थे, बड़े स्मार्ट थे, और मैं बी के कोने में दुबका हुआ बैठा था और सोच रहा था अगर ये लड़के जा रहे हैं तो मुझे तो नौकरी मिलने वाली नहीं। सच्ची बात है, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी पर इंग्लिश बोलना एक पंजाबी लड़के के लिए अभ्यास ही नहीं था। खैर, अब हम पहुंच गए, शॉर्ट में बताता हूं। जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई तो उन्होंने मेरे से 5 प्रश्न पूछे। अब एक बीके जो होता है उसका कितना के ध्यान अपनी पढ़ाई में जाता आप सब जानते हैं। पास तो कर लिया, बाबा ने शक्ति दे दी, तो 4 सवाल में मैं कोई उत्तर ठीक नहीं दे सका। 5वां प्रश्न ये था, आप क्या तनख्वाह लेंगे? अब मुझे कुछ पता नहीं तनख्वाह की और डिटेल का, कि उसमें पे स्केल होता है, इंक्रीमेंट होता है, कुछ पता नहीं। मैंने कहा जी जो आप दे देंगे, मुझे पता ही नहीं। तो बाद में मैं रखा गया, बाकी सारे लड़के बाहर। अब ये कैसे, मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सरकार की नई कंपनी है, इसका नियम है जो सबसे शुरू की तनख्वाह है वो हम देंगे। और वो लड़कों ने सोचा कि दिल्ली जैसे शहर में कई तो नौकरी करते थे, एक जंगल में जहां अभी उन्होंने जमीन ली है, कुछ फैक्ट्री भी नहीं बनाई, कौन आएगा इतनी दूर, जरूर ज्यादा तनख्वाह लेंगे तभी हम आएंगे। तो सब ने ज्यादा तनख्वाह मांगी थी, इसलिए उनका नियम नहीं था, मैं रखा गया। अच्छा, अब कहानी यहां तक पूरी नहीं होती। दोस्त उनको भी बहुत बड़ी कंपनी थी, उनको 8-9 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे। तो उन्होंने 3 महीने बाद 1.5 गुना तनख्वाह करके दोबारा विज्ञापन दिया, यानी नीचे की तनख्वाह ऊपर कर दी अपने नियम के लिए। तो नए लड़के आए, पर मैं क्योंकि ऑलरेडी अंदर था, मेरी तनख्वाह 1.5 गुना हो गई। अब बाबा ने मेरी तनख्वाह भी बढ़वा दी, नौकरी भी दिलवा दी। अगर पहले 1.5 गुना होती तो मैं बाहर था। अब आप सोच सकते हैं बाबा की मदद क्या होती है। इस प्रकार से 17 साल मैंने वहाँ बाबा के कहने पर 17 साल एक ही जगह जॉब किया। बहुत बाबा ने रिस्पेक्टेबल रखा, मुझे बड़ी चिट्ठियाँ मिली ऑफिस से, बहुत अच्छा काम करते हो। और सच ये है कि मैं बहुत थोड़ा काम करता था, लेकिन जो काम करता था वो बाबा अच्छा करवा देता था। उनके अंदर था कि बहुत अच्छा काम करता है। किसी का भी कोई डिसिप्लिन का केस हो जाए, स्टोर खोलना हो, तो मेरे से पूछते थे। जब मैंने रिजाइन किया तो वो कहते थे जी आप कुछ भी ना करो, आप कंपनी में रहो। यहाँ तक हो गया था। तो कहने का भाव ये है, बाबा का हाथ सिर पर है। जब मैंने रिजाइन किया तो दूर के रिश्तेदार मेरे, जो कभी मेरे सामने नहीं आए, मेरे पास आए और बोले तुम ऐसी गलती मत करो, लोगों को तो नौकरी मिलती नहीं, तुमको सरकारी नौकरी है, तुम छोड़ रहे हो, बुजुर्ग हो जाओगे तो मांग के खाओगे क्या, ऐसे ऐसे मुझे बोलते थे। पर मुझे अनुभव था कि बाबा है तो कल्याण ही कल्याण है। और सचमुच उस दिन से लेकर आज तक कभी भी बाबा ने मुझे अनकंफर्टेबल नहीं रखा। किस चाहे ट्रेन में भीड़ हो, कुछ हो, मेरे को बाबा ने, भगवान है, हर चीज में ठीक तरह से करवाया। अब मैं आपको ट्रेन का भी एक सुना देता हूं, दो सुना देता हूं। अच्छा, एक बार पटना में बहुत बड़ा मेला हुआ। उन दिनों मेले की बड़ी वैल्यू थी और उस मेले में चीफ मिनिस्टर ने आना था। मैं मधुबन एक दिन पहले ही पहुंचा था तो बाबा ने मुझे कहा बच्चा तुम उस मेले में जाओ और गीता का भगवान सिद्ध करके आना है। बाबा ने मुझे गीता के भगवान सिद्ध करने की ड्यूटी दे दी थी। आज भी मैं ऊपर गया था तो झोपड़ी जो है उसमें मैंने बैठकर जो मैंने गीता के भगवान के बारे में एक छोटे से पॉइंट्स लिखे थे बाबा को सुनाए थे। तो बाबा ने कहा मैं यही चाहता हूँ, तुम गीता का भगवान सिद्ध करो। अब मुझे संस्कृत नहीं आती, गीता तो भगवान क्या सिद्ध करना है, संस्कृत ही नहीं आती, पर बाबा ने कहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, भक्ति में भी कहते हैं कि अंधे को दिखाई देता है, लंगड़ा पहाड़ पार कर जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, गूंगा गाने लग जाता है। तो बाबा का भी यही है कि जो कोई काम नहीं कर सकता उससे ही करवाना है ताकि सिद्ध हो के भगवान ने किया, इसने नहीं किया। अगर संस्कृत जानने वाला गीता को सिद्ध करेगा तो कहेगा ना कि देखो मैं गीता जानता हूं। अब बाबा ने दादी चंद्रमणि जी को पंजाब में भेजा, उनको पंजाबी नहीं आती थी। दादी हृदय मोनी जी को कर्नाटक में भेजा, उनको कन्नड़ नहीं आती थी। दादी जानकी को लंदन में भेजा, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। गुलजार दारी खुद कहती थी कि वो कहते हैं कि तुम ऑक्सफोर्ड में लेक्चर करोगी, मैंने तो दुनिया का नक्शा भी नहीं देखा। लेकिन बाबा ने करवाया ना तो फिर ये पता लगता कि बाबा ने करवाया, मैं निमित्त हूं। अच्छा, तो अब बाबा ने बोल दिया तो मैं, मेरी आदत थी कि मैं रेलवे रिजर्वेशन करके ही जाता था ताकि मैं स्लीपिंग सीट में जाऊं। तो पटना के लिए मैंने कोशिश करके आने जाने की सीटें रिजर्व करवा ली। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैं वहां गया, एक दो दिन रहा तो गीता के भगवान का स्टॉल बना लिया, एक पर्चा छपवा लिया जिसमें वोट होता है ना, किशन है या शिव है, तो समझा के मैं लोगों से फार्म भरा लेता था। कम से कम 1000 फार्म भर गए कि शिव है, मैं बोरी भर ली। अच्छा, अब मुझे वापस आना था तो कोई कारण बन गया, मुझे एक दिन पहले आना पड़ गया, मेरी माताजी बीमार हो गई। तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, पहले तो मैंने सोचा मैं पूरा करके आऊंगा, फिर मैंने कहा कि माताजी को कुछ शरीर वगैरह छूट गया तो लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमार अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते। तो मैंने संदेशी से पूछवाया, उसने कहा एक दिन पहले आ जाओ, मथुरा से होके आ जाना, मेरी माता जी रहती थी, एक तूफान मेल गाड़ी चलती है जो मथुरा से होके आती। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सीट रिजर्व नहीं थी, तो मुझे तो किसी तरह आना ही था। तो वहाँ हमारे ओम प्रकाश भाई होते थे जिसको रेलवे मिनिस्टर कहते हैं, वो भी आ गए, सब स्टेशन पर आ गए, हम आपको सीट दिलवाएंगे। अब वो तूफान मेल आई, उसके सब डिब्बे बंद, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे कम होता है, तो उन्होंने डिब्बे ही नहीं खोले, हम खटखटाते रहे। बड़ी मुश्किल से ट्रेन चलने के वक्त किसी ने डिब्बा खोला, मैं उसके अंदर चला गया, ट्रेन चल पड़ी। वहाँ मैं खड़ा हूँ, सीट का तो सवाल ही नहीं, टीटी नहीं है उसमें, इतना अराजकता, टीटी दो स्टेशन बाद चढ़ता है उसमें। अच्छा, मैं खड़ा हूँ। इतने में एक भाई, बंगाली भाई, बनियान पहने हुए, वहाँ टॉयलेट होता है, वहाँ आया, तो एक माता खड़ी थी, उसके पास बच्चा भी था, दो बच्चे थे, तो उसने समझा ये माता मेरे साथ है, तो उसने कहा आप लोगों के पास सीट नहीं है? तो माता ने कहा मेरे पास तो है पर टीटी नहीं है, मुझे पता नहीं मेरी सीट कौन सी है। तो मुझे कहता आपके पास नहीं है? मैंने कहा हाँ। कहता आप मेरे साथ आ जाओ। वो स्कूल टीचर था, रेलवे का ट्रांसफर हो रहा था, उसके पास 7 सीटें थी, और उसने अपने दो बच्चों को इकट्ठे सुला के मुझे सुला दिया फुल, और मेरे को आंसू आए कि देखो बाबा ने यहां भी मुझे रेलवे की सीट दिला दी। अच्छा, इसी प्रकार एक और घटना है, मेरा काम था सेवा पहले, बाकी काम बाद में। तो दिल्ली के पास एक मुजफ्फरनगर है, तो मुजफ्फरनगर के भाई बहनों ने मेला लगाया, प्रदर्शनी लगाई, और मेरे को शौक था उसमें जाने का, मैं नौकरी भी करता था, तो शनिवार को मैं वहाँ चला गया, छुट्टी हो गई, शनिवार वहाँ रहा, संडे तक सेवा किया, संडे रात को मुझे वापस अपने शहर में नौकरी पर आना था। एक ट्रेन आती है, वो दिल्ली से चलती थी, लगभग रात के 10:30 बजे वो मुजफ्फरनगर 3 मिनट के लिए रुकती थी, छोटा शहर था। अब मैं सेवा करके सब करके शाम तक करता रहा, फिर अपना सामान लेके रेलवे स्टेशन पर आ गया, मेरे पास रिजर्वेशन है नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा कि एकाग्रता में निश्चय में बड़ी विजय है, आज मैं खड़ा हो जाऊंगा, जो डिब्बा मेरे सामने आएगा उसी में चढ़ूंगा, अब बाबा अब आगे जाओ। लो जी, ट्रेन आई, डिब्बा मेरे सामने आ गया, पहले तो मेरा मन जरा सा हिला कि मैं डिब्बा देख लूं, फिर मैंने कहा नहीं, एक टांग पे खड़े होके जाना पड़े पर मैं इसी में चढ़ूंगा। अच्छा, मैं उस डिब्बे में मैं चढ़ गया, तो शाम के रात के 10:30 बजे क्या सीन होता है, अनरिजर्व डिब्बे में लोग सिगरेट पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब सीटें फुल हैं, ऊपर की सीटें जिस जिसने लेनी थी वो लेके लेटा हुआ, उसमें 3-4 कंपार्टमेंट होते हैं। तो मैं गया, पहला कंपार्टमेंट देखा, वही हाल, ऊपर की सीटें फुल है, नीचे की फुल है, आखिर मैं चौथे लास्ट में पहुंच गया। और मैंने मन में सोचा कि बाबा कब कहता है तुम हट करो, बाबा कब कहता है तुम ऐसे, बाबा ऐसे थोड़ी तुम्हारी मदद करेगा। उसी वक्त अचानक एक भाई ऊपर सोया हुआ था, उसने अपना बिस्तरा लपेटा और उतर गया, और मैं उसकी जगह चढ़ गया। अच्छा, अच्छा, अब मैंने सोचा ये भाई पहले क्यों नहीं उतरा, ये तो पहले भी उतर सकता था, ये वेट करता रहा कि जब ये आएगा, क्योंकि पहले उतरता तो नीचे वाला कोई ऊपर सो जाता, तो बिल्कुल वो वेट करता रहा। जब मैं वहां आके सोच रहा था, संकल्प चल रहा था, उस वक्त वो पैकअप करके चला, फिर मेरे आंसू आए कि मैंने कहा देखो बाबा यहां भी सीट दलवा रहा है। तो 100% मेरा पक्का आपको ये कहना है कि एक बारी आप बाबा की कोई बड़ी बात मान लो, बाबा ने मुझे कहा तुम नौकरी कर लो, वो छोड़ दो, मैंने मान लिया, तो लाइफ लॉन्ग बाबा आपकी हर कोई भी परीक्षा आएगी उसको ठीक करेगा। अच्छा एक और सुना देता हूं। अच्छा अब जब हम नौकरी करते थे तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी थी, उसके कई जगह ब्रांच थे, असम में था, बॉम्बे में था, सिंदरी में थे। अच्छा तो मेरे को बाबा ने कह दिया कि बच्चे तुमने कैसे कहा कि असम में हमारी फैक्ट्री खुली, तो मैं बाबा के पास गया कि बाबा वहाँ हमारा सेंटर नहीं है, तो आप कहते हो सेंटर खोलो, तो मेरे को वहाँ हमारी फैक्ट्री खुल रही है, तो वो पुराने लोगों को नई जगह भेज दे, वो मुझे भेज रहे हैं, मैं चला जाऊं। तो बाबा बोले बच्चे असम में 9 महीने बारिश होती है, बड़ा बड़ा मच्छर होता है, तुम वहां नहीं जाना। बाबा कभी आबू से बाहर जाता है, ऐसे बाबा ने मुझे कहा, तुम वहीं रहो। अच्छा तो मैंने सोच लिया कि मैंने यहीं रहना है। तो क्या होता था, जब नई कंपनी खुलती थी तो और लड़के चले जाते थे, थोड़ी तनख्वाह भी बढ़ा देते थे, मैं वहीं रहता था, बाबा ने कहा हुआ। अच्छा अब क्या हुआ कि जब मेरी पोस्ट काफी बड़ी हो गई तो उसमें सारी कंपनियों के कैंडिडेट आते थे, इंटरव्यू होता था, गवर्नमेंट के ऑफिसर भी होते थे उसमें, और जो अगर कोई पास हो जाए और कोई फेल हो जाए तो बड़ा छोटा बड़े का अफसर बन जाता था, सार ये है। तो ऐसा एक इंटरव्यू था, मैं तो बीके था, काम बहुत अच्छा करता था, पर मेरा कोई कहे ध्यान तुम्हारा फैक्ट्री में लग जाए तो नहीं लगता था। आप हैरान होंगे, 17 साल मैंने नौकरी की है, 11 साल में फैक्ट्री के अंदर ही नहीं गया। आपने ऐसा व्यक्ति देखा, 17 साल नौकरी की है, 11 साल फैक्ट्री के अंदर ही भी नहीं गया। यहाँ तो लोग एक प्रदर्शनी देखने जाते हैं तो 4-10 चीजें और भी देख के आ जाते हैं। मैं क्योंकि हमारा ऑफिस बाहर था, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, एक बारी मुझे कुछ काम पड़ा तब मैं फैक्ट्री के अंदर गया। तो अच्छा अब क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ तो मेरा इंटरव्यू अच्छा, दिल्ली में इंटरव्यू था, बहुत बड़ा बोर्ड था, अच्छा नहीं हुआ। तो मैं घर आया तो मेरे माता पिता तो ज्ञान में थे, उन्होंने कहा भोजन करो, तो मैंने कहा मेरे को भूख नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों, मैंने कहा इंटरव्यू खराब हो गया है इसलिए। बोले बाबा बैठा है ना, पिताजी बोले। मैंने कहा बाबा तो बैठा है, पर बाबा ये थोड़ी कहता है कि बच्चे तुम फेल हो जाओ, तो ये तो अच्छा नहीं, बाबा का नाम बदनाम होता है, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। बोले बाबा बैठा है ना, तो मेरे को सचमुच में ठीक तरह भोजन नहीं कर सका, और वापस अपने शहर में गया और दिन गिनने लगा कि किस दिन इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और कोई मेरा छोटा मेरे ऊपर बॉस बन जाएगा। लो जी रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया कि वो सारा इंटरव्यू क्वैश हो गया, क्योंकि उस इंटरव्यू का बोर्ड ठीक तरह नहीं बना हुआ था, तो मेरे कारण वो इंटरव्यू ही क्वैश हो गया, मैं बच गया। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि एकदम 100% बाबा कोई भी काम हो। अब मान लो दादी जानकी जी का टिकट निकला, डाक टिकट, इस एक और ताजी एग्जांपल है, दादी जानकी जी का डाक टिकट निकलना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं, एक कमेटी बैठती है आदि आदि बहुत सारे, और शरीर छोड़ने के 10 साल तक तो किसी का टिकट निकलता ही नहीं, सिवाय राष्ट्रपति के निकलता ही नहीं, और अप्लाई भी नहीं कर सकते, कोई लॉ नहीं है। पर एक जगह लिखा हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर आर्ट कल्चर सभ्यता आदि के बारे में मशहूर है, उसकी डेथ होती है तो उसका निकल सकता है, क्योंकि 10 साल बाद तो लोग उसको भूल ही जाएंगे। तो हमने आर्ट कल्चर लेकर अर्जी बनाई। अच्छा कुदरती तौर पर कोरोना के कारण जो कमेटी होती है ना स्टैंप की, उसमें 10-20 लोग होते हैं तरह, वो कमेटी कैंसिल थी, वो कमेटी थी ही नहीं, एक स्टेप तो बच गया, तो इसलिए खाली मिनिस्टर ने पास करना था। तो मिनिस्टर कोई रविशंकर प्रसाद थे, हम सोच रहे थे उनसे मिलेंगे जाके, बड़ी तैयारी करी, बहुत कुछ करा। तो रविशंकर प्रसाद ने कहीं दादी जानकी जी का भाषण सुना हुआ था, तो उन्होंने अपने आप ही वो ओके कर दिया और ये टिकट निकल गया। तो हमें भी ये था कि दादी जानकी की शक्ति इतनी है कि वो आप ही करवाएगी, तो दादी जानकी की शक्ति ने वो निकलवा दिया। तो कहने का भाव ये, फिर बाबा ही कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता। इसलिए कोई भी काम हो, हम लोग साधारण हैं, लेकिन बाबा अपनी शक्ति से कर सकता है। कितने सारे राष्ट्रपति आप समझो, जैल सिंह से लेकर बाबा ने यहाँ भजवाए हैं। शुरू शुरू में तो हमारा यज्ञ बहुत छोटा था, ब्रह्मा कुमारी को लोग हंसते थे, बैज लगाओ तो क्वेश्चन करते थे। उस समय भी बाबा टच करके काम करवा देता था। बाबा ने कहा हुआ था पहले उनको शांति में बैठाना, फिर काम करना। तो सचमुच ऐसा ही था। तो युक्ति से हर काम बाबा कराता रहा है। तो आपको भी ये निश्चय तो है ही, हर एक बीके को अनुभव है कि बाबा सूक्ष्म में कितनी मदद करता है, कितनी मदद करता है। और एक ही है, आज हम ऊपर गए थे तो एक संदेश भोग का आया। वो संदेश ये था कि बाबा ने एक जादू की चाबी दी है। आज के व्यक्त के दिन बाबा ने एक जादू की चाबी दी है बच्चों को, और उस चाबी से आप कोई भी ताला खोल सकते हो, कोई भी अर्थात विघ्न को खोल सकते हो। लेकिन उस चाबी के अंदर क्या लिखा हुआ था, ऊपर जो उसके गोल होता है उसमें यही लिखा हुआ था, मैं बाबा का, बाबा मेरा सच्चे दिल से। अच्छा, फिर उसका जो लंबा डंडा होता है चाबी का, उसमें लिखा हुआ था समर्पण और निमित्त मात्र। फिर उसके नीचे जो वो होता है जिससे चाबी खुलती है, वहां क्या लिखा हुआ था कि जिसको कहते हैं ना एक तो कंपेनियन होता है, उसके बाद क्या होता है कंबाइंड, उसमें लिखा होता कंबाइंड कि आप अच्छा। फिर बच्चों ने चाबी से खोलने की कोशिश की तो किसी की चाबी अटक गई, किसी की अंदर ही नहीं जा रही थी, किसी की घूम गई। तो बाबा ने कहा कि तीनों चीजें चाहिए, और जो कंबाइंड रहेगा बाबा के साथ उसकी चाबी से खुल जाएगा। इसलिए ये चीजें हमारे लिए शिक्षा की हैं कि मैं बाबा का, मैं बाबा मेरा, संपूर्ण समर्पण और कंबाइंड रहना है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारी ताला खुल जाएगा। तो इसलिए सारी बात धारणा की है। और बाबा ये कह रहे हैं कि अब हमें हर एक को सूक्ष्म धारणा करनी है। सूक्ष्म ही हमारी कमी कमजोरियां सूक्ष्म है, अंदर की है, उसको ठीक करना है। और अपने साधनों को, सेवा के साधनों को अलौकिक बनाना है। जो आज की मुरली में भी था कि हमको शांति की शक्ति से, शांति की शक्ति जमा करनी है, उस शक्ति से हम जो विज्ञान करता है वो हम लोग कर सकते हैं। तो साधनों को हमें अब सूक्ष्म बनाना है, सेवा के साधनों को। और जो अंदर की चेकिंग है वो ये है, आप देखेंगे कि जो हमारी पुराने संस्कार हैं, वो पुराने संस्कार अगर भस्म नहीं हुए हैं, तो वो हमको तंग करते हैं। तो संस्कारों को भस्म करना, उससे ही अंदर की कमी कमजोरी दूर होती है। और संस्कारों को भस्म करने के लिए बाबा ने एक ही तरीका बताया हुआ है, मेरी याद। तो बाबा की याद हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कंबाइंड कहा है कि हर वक्त याद रहे, तो वो तभी रह सकती है अगर हम कंबाइंड होंगे कि बाबा साथ ही है। तो उससे हमारे पुराने संस्कार जब खत्म होंगे तब कमी कमजोरी खत्म होगी। तो हम और सब कुछ करें लेकिन बाबा की याद से जो विकर्म विनाश होने हैं वो हमारा मुख्य सब्जेक्ट हो जाता है। उसके आधार पर ही सेवा है, उसके आधार पर ही हमारी स्थिति है। वैसे बाबा ने आज की मुरली में जो दो शब्द कहे हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो बैलेंस कहा है। ये बैलेंस एक बहुत ही गहरा शब्द है। अगर व्यक्ति की एक टांग एक इंच छोटी हो सिर्फ और रेस लगे, तो एक इंच छोटी टांग वाला कभी रेस को नहीं जीत सकता। दोनों टांगे बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से हर चीज में हमारा बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब है हम किसी चीज में बहुत आगे ना बढ़ जाएं, किसी चीज में बहुत पीछे ना रह जाएं। कोई सब्जेक्ट हमारे शौक का है तो हम उसको खूब करें, मान लो सेवा खूब करें, लेकिन अगर सेवा के साथ सहन शक्ति समाने की शक्ति नहीं होगी तो सेवा में कोई विघ्न आएगा तो हम उतना ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए बैलेंस वाला कभी डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे शरीर और आत्मा है तो हमें दोनों का ख्याल रखना है। कई बार हम शरीर का ख्याल नहीं रखते, बाद में हमें दिक्कत होती है, या आत्मा की उन्नति का नहीं रखते, शरीर का रखते, तभी दिक्कत होती है। तो एक तो बाबा ने बैलेंस कहा है हर प्रकार का। दूसरा सुखदाई, एक शब्द आज मुरली में बाबा ने कहा सुखदाई। अब सुखदाई इतना शानदार शब्द है, सुखदाई भव। अगर हम सुख देने वाले बन जाएंगे तो हमको सुखी मिलेगा। तो सुखदाई बाबा ने कहा ना कि अपने आत्मा मन की शुद्धि के लिए हमको सुखदाई बनना है, सबका शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, शुभ संकल्प करना है और ध्यान रखना है कि मैं सबको सुख दूं बस। और शिव बाबा की शक्ति हमारे साथ है तो हम सबको ब्रह्मा बाबा, ऐसे तो हर एक के जीवन में बहुत सारी बातें हैं परंतु मुख्य बात यह है कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके हमें धारणा करनी है। ओम शांति।
ये बताया।
आनंद भाई कह रहे एक बार फिर ये बैग दिखाओ तो देख लीजिए इसको। इसको आज भी इतना फर्स्ट क्लास है क्योंकि बाबा का बैग है। और उन दिनों में जब बाबा ने दिया उसमें भारत में ऐसे बैग होते ही नहीं है। इसके अंदर आज भी कोई लिटरेचर देखो रखा है पुराना, ये ऐसे हाँ। अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा इसमें देखिए एक ये लेटर रखा है, ये पता नहीं किस डेट का है। अच्छा, और एक इसमें ये पुस्तक रखी है गीता के भगवान की जो बाबा ने हमें ड्यूटी दी थी। एक कोई फोल्डर रखा है, लास्ट कॉन्फ्रेंस का होगा। ठीक है, थैंक यू।
भैया मैंने बोला।